Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Shuddhatmane Namah. Jam Jasya Jammi Jese Jena Vihanena Jammi Kalammi Nadam Jinena Niyadam Jammam Va Ahava Maranam Va Tam Tasya Tammi Jese Jena Vihanena Tammi Kalammi Kosakka Divaredum Indo Vatah Jinindo Va Evam Jonishayado Janadi Dauvani Sauvapachaye So Saddikhi Sutto Jo Sankadi Sohuku Sitti एक क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन जो कुंचन भारिल जी ने लिखा है इस पुस्तक के आधार पर हम क्रमबद्ध पर्याय जो सिद्धांत है जो सर्वज्ञ भगवान द्वारा बताया गया है और आचार्यों ने अनेक ग्रंथों में अनेक जगह उसकी चर्चा की है उसका हम यहाँ अभ्यास कर रहे हैं। पेज नंबर हिंदी में है 50, गुजराती में 46। हाँ, कल हमने देखा था कि जिसके माथे पर परद्रव्य की पर्याय के कर्तापने की बुद्धि है, उसका भार है, वो निराकुल नहीं हो सकता, वो चिंता से मुक्त नहीं हो सकता और उसका उपयोग अपनी ओर नहीं जा सकता। उसकी चर्चा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, भार लेकर ऊपर चढ़ना कठिन ही नहीं असंभव है, विशेषकर यानी स्पेशली ऐसा भार कि जिसके उठाने की भी सामर्थ्य हमारे में न हो। क्या कोई पर्वत को लेकर पर्वत पर चढ़ सकता है, यानी पर्वत को हाथ में उठाना और पर्वत चढ़ना, तो पर्वत पहले हाथ में ही नहीं उठा सकता? नहीं, कदापि नहीं। उसी प्रकार परद्रव्य में फेरफार करने की बुद्धि वाला व्यक्ति निज द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखो, इतना तो हम जान रहे हैं, कोई पर्वत उठा नहीं सकता और उठाकर दूसरे पर्वत पर चढ़ने की तो बात ही क्या। वैसे जिसको अभी तक परद्रव्य में फेरफार करने की बुद्धि है, निमित्त से कुछ कार्य होता है द्रव्य में, वहाँ कुछ मानते ना, अरे वहाँ ऐसा हुआ, उसके वाइब्रेशन आये और मेरा कार्य यहाँ हुआ, ऐसी कल्पना ये ऐसी भ्रांति जिसकी है, या मैं अन्य का कुछ कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए, मैं करूं तो उसकी पर्याय बदलेगी, ऐसे जो परद्रव्य में फेरफार करने की बुद्धि वाला जो व्यक्ति है वो निज द्रव्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता, बाय चांस भी नहीं। वो कितना भी प्रयत्न करे, ऐसे ठीक से बैठे, ओम ओम करे, घंटों तक बैठे, अपने मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, कितना भी कहे, उसको अपने आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। यद्यपि स्वयं परिणमनशील इस जगत के परिणमन का रंच मात्र भी उत्तरदायित्व इसके माथे पर नहीं है, यानी वो किसी का कर ही नहीं सकता और न किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व नहीं, किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके माथे पर नहीं है, तथापि अज्ञानी आत्मा स्वयं की मिथ्या कल्पना के आरोपित भार से स्वयं ही दबा जा रहा है। उसने मान लिया है और ये मान लिया कि अरे बाप रे, इतना सारा बोझा मेरे माथे पर है, अब मैं कैसा करूं, इतना सारा काम मेरा है, मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि वो कर सकता ही नहीं है, अपनी इमेजिनेशन में ही उसने मान लिया है। स्वामी जी एक कथा कहते थे कि एक आदमी सामने रो ऐसा दातुन करने को घर के बाहर जाता था और वहाँ भैंसे आती जाती थी, तो वो घर में बैठे बैठे अभी चिंतन करने लगा कि मैं भैंसा हूँ, मेरे सिंह आ गए, देखो मेरे सिंह बढ़ गए, देखो मेरे सिंह इतने बढ़े कि एक उस कोने पे जा अटका है और एक इस कोने पे जा अटका है, तो लोग उसको बाहर बुलाते, चलो घर के बाहर क्यों नहीं आ रहे, नहीं नहीं मेरे सिंह अटक गए अंदर और मैं यहाँ से हिल डुल नहीं सकता। ये उसने अपने भ्रम में ही मान लिया है, वो तो हमारे तुम्हारे जैसा आदमी है, उसके ना कोई सिंह है, परंतु मान लिया वो मैं अटक गया हूँ उसके कारण, ये सारा उसका भ्रम ही है। भ्रम तो कहते हैं कि जिसने ऐसा मान लिया है मिथ्या कल्पना करके आरोपित भार, अपने ही इमेजिनेशन में उसने भार कल्पना कर लिया और वो भार अपने माथे पर भी उसको भी उसने मान ही लिया है, स्वयं ही दबा जा रहा है। पर में तो इसे कुछ करना ही नहीं है, अपनी पर्याय में भी कुछ नहीं करना है, मुझे ऐसा बैठना चाहिए, ऐसा यहाँ नाक पर दृष्टि लगानी चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए, ये जो मैं कुछ करूँ 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 और मेरी पर्याय जल्दी लाऊं या मुझे चाहिए वह पर्याय लाऊं, ये जो मान्यता है, देखो ये मान्यता मिथ्या तो है। और इतनी मिथ्या मान्यता के साथ सम्यक तो हो जाए, ये तीन काल में नहीं हो सकता। जिसको सम्यक तो होगा उसके भी अंतर्मुख परिणाम होंगे, परंतु उसमें तत्व निर्णय होगा, तत्व निर्णय पूर्वक अंतर्मुख परिणाम करेगा, तो उसकी बाह्य क्रियाएं, उसके बाह्य देखकर अज्ञानी भी ऐसे बैठकर यहाँ दृष्टि लगाना चाहता है और मानता है कि मुझे आत्मानुभव हो जाएगा खाली बैठने से। 50 पाना आपको 46 होगा गुजराती। यहाँ क्या विषय चल रहा है कि इसमें पर का करने धरने की बुद्धि है, और जब तक पर के करने धरने की बुद्धि है, जैसे यहाँ उदाहरण दिया था कि जैसे पर्वत को अपने माथे पर लेकर कोई पर्वत नहीं चढ़ सकता, वैसे पर की कर्तृत्व बुद्धि लेकर परमे में कुछ फेरफार कर सकता हूँ इस मान्यता के साथ आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। और इसको पर में तो कुछ ही नहीं करना, अपनी पर्याय में भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि अभी हमने देखे थे ना अपनी अनादि अनंत सारी पर्याय सुनिश्चित अपने अपने स्वकाल में होने वाली है, वे ही पैदा होगी, कोई अन्य भी नहीं होगी, सब कुछ सहज हो रहा है और होता रहेगा। यानी सहज परिणमन ये भी वस्तु का ही स्वरूप है। हम मानते हैं कि हम परिणमन नहीं करेंगे तो वस्तु में परिणमन कैसा होगा। अभी हमारे में अनंत गुण है जो कि हमें पता भी नहीं उनके नाम, तो क्या उन गुणों का परिणमन हम करते हैं इसलिए हो रहा है, यानी करते ने हम बुद्धिपूर्वक या हम चाहते हुए, यानी हमने इच्छा करके उसका परिणमन किया, क्या वो सारा ही सहज हो रहा है। अस्तित्व गुण का अस्तिरूप 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 रहना 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 ऐसा परिणमन हो रहा है। तो जिसको पता नहीं अपने में अस्तित्व गुण है, पुद्गल को पता नहीं है, इस माइक को पता नहीं अपने में अस्तित्व गुण है, तो क्या उसका परिणमन सहज हो रहा है कि नहीं रहा? उसमें भी अनंत गुण है, उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्णादि ये तो चार गुण हमको मालूम है पुद्गल में जो होते हैं, तो उनका परिणमन कौन करता है? तो उनका परिणमन भी सहज उनके अपनी योग्यता से हो रहा है। ऐसे अपना भी सारा ही परिणमन अपने अंदर ही अपनी द्रव्य की योग्यता से, हम यानी मैं द्रव्य, मैं जीव द्रव्य ही अपनी पर्यायों का करता हूँ। परंतु माना क्या है कि मैं मनुष्य हूँ, और मनुष्य मानकर फिर मैं अपने कुछ विशिष्ट पर्याय लाना चाहता हूँ, ऐसी मान्यता में सारा गड़बड़ घोटाला है। सब कुछ सहज हो रहा है और होता रहेगा, कहा भी है होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का कर ता क्या काम, यानी मैं जग का कोई भी कार्य नहीं कर सकता, प्रश्न में उसका उत्तर समाया है। इस पर लोग कुछ लोग कहते हैं कि न सही पर का, पर अपना काम तो करना ही होगा, एक करने पर जोर है उनका, करना ही होगा, नहीं करे तो कैसा होगा। यदि हम अपना ही काम न करेंगे तो कौन कर जाएगा हमारा काम, खाना पीना उठना बैठना तो करना ही होगा, और यह सब सोच समझ कर करना होगा, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, स्वास्थ्य चौपट हो जाएगा। अभी उसका उत्तर नीचे देते, उससे कहते हैं कि जरा विचार तो कर, जब तू माँ के पेट में था तब सोच समझ कर क्या क्या करता था। इसी प्रकार जब माँ दो माँ का था तब भी सोच समझ कर क्या करता था, फिर भी इतना बड़ा तो हो गया और अब बहुत समझदार हो गया, खूब सोच समझ कर खाता पीता उठता बैठता है, फिर भी निरंतर कमजोर क्यों होता जाता है। पहले तो बचपन में कुछ पता नहीं था तो अपने आप बढ़ रहा था, अभी हम 50 के बाद सब कुछ सोच समझ से दूसरों को भी सिखाते हैं कैसा करना क्या करना क्या नहीं, और फिर भी दिन ब दिन स्वास्थ्य कैसा होता जा रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? अब संभाल लेना इस शरीर को अच्छी तरह, कहीं यह यही न छूट जाए और तू इसे यही छोड़कर चलता बने। यानी इतना आप शरीर को संभाल सकते हो तो इसको यहाँ मत छोड़ जाना, साथ में ले जाना। पूरी तरह संभाल के रखते रखते भी एक दिन यही होगा कि यह यहीं पड़ा रहेगा और तुझे इसे छोड़कर जाना होगा, क्योंकि मैं तो इससे भिन्न ही द्रव्य हूँ। तो और मेरा और इस शरीर का एक दूसरे के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो निश्चित समय तक है, एक समय नहीं बढ़ेगा और न एक समय कम होगा। आयु की बात है, मनुष्य पर्याय में रहने की जीव की अपनी कुछ योग्यता है। आयु कर्म तो उसमें निमित्त है, वो परद्रव्य है। निमित्त पर आरोप रख कर हम कहते हैं कि आयु जब तक है तब तक ही जिएगा, वो भी निमित्त का कथन है। परंतु उसमें सच जीव की उपादान योग्यता क्या है कि आत्मा की, मनुष्य पर्याय आत्मा अकेले आत्मा की अवस्था, मनुष्य पर्याय जीव की और शरीर मिलकर वो मनुष्य होता है, उसको भी हम मनुष्य पर्याय कहते हैं, जिसको असमान जाति द्रव्य पर्याय, एक जीव और अनेक उद्गल द्रव्य, इसको कहते हैं असमान जाति, है ना? क्योंकि जीव जाति एक अलग है, उद्गल जाति अलग है, असमान है, समान समान नहीं है। ये कोई भी स्कंध है पुद्गल का, इसमें सारे ही पुद्गल 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 है, तो हम इसको समान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं, अनेक द्रव्यों की मिली हुई, उसको कहते हैं समान जाति। और एक जीव और अनेक पुद्गल, इनकी मिली हुई अवस्था वो असमान जातीय द्रव्य पर्याय, उसको भी मनुष्य पर्याय कहेंगे। अभी हम अकेली जीव की देखते हैं पर्याय, अभी मैं जीव द्रव्य हूँ, अभी मेरी कौन सी पर्याय चल रही है, तो मेरी मनुष्य पर्याय चल रही है। तो मनुष्य पर्याय दो तरह से शास्त्र में उसकी चर्चा आती है। तो ये जो जीव की जो मनुष्य पर्याय है, तो उसकी तो लिमिटेड अवस्था पर्याय जो है, अभी हम जन्म से मरण तक की, यानी वो जीव की पर्याय जो है, वो अनेक पर्यायों को हम कहते हैं, एक समय में भी जीव की पर्याय, मनुष्य पर्याय, दूसरे भी, तीसरे भी, चौथे भी, समझो 100 साल तक वो मनुष्य पर्याय, मनुष्य पर्याय, मनुष्य पर्याय, मनुष्य पर्याय है उसकी। हम सारे 100 सालों को मिलकर कहते ये इसकी मनुष्य पर्याय है। उसके पश्चात अगले समय में वो देव में जन्मा, तो उसकी देव पर्याय शुरू हुई, जीव की देव पर्याय चालू हो गई, तो हम कहेंगे देव पर्याय, देव पर्याय, देव पर्याय। वो कितने सागर तक, एक सागर तक वो देव पर्याय में है, तो एक सागर तक हम कहेंगे वो उसकी पर्याय है। वैसे उसकी यहाँ रहने की योग्यता से वो यहाँ जी रहा है, जीव की योग्यता समाप्त हुई, जीव ही अभी देव पर्याय में चला गया, उसमें निमित्त हम आयु कर्म को लेते हैं कि उसकी मनुष्यायु, उसका उदय खत्म हो गया, देवायु का उदय चालू हो गया। उदय में तो देवायु है, परंतु उपादान में, निमित्त में देवायु को रखा, उपादान में उस जीव की देव पर्याय। हाँ, हाँ। समान जाति की अपेक्षा वो असमान जाति की अपेक्षा वो असमान अभी देव हुआ, परंतु उसकी चर्चा नहीं, अभी अकेले जीव द्रव्य की पर्याय ले रहे हैं। जीव की अपनी योग्यता मनुष्य रूप रहने की वो उसकी मनुष्य पर्याय है, जीव की ही योग्यता देव रूप रहने की वो उसकी जीव की ही देव पर्याय है। देव में जब गया तो वैक्रेक शरीर और वो जीव, इनकी जो मिली हुई अवस्था होगी वो होगी असमान जाति द्रव्य पर्याय, वो अनेक द्रव्यों की मिली हुई, परंतु एक एक द्रव्य की अपनी योग्यता है। वहाँ अकेला जीव अगर हम लेंगे तो उसकी भी कौन सी पर्याय है, तो उसकी मनुष्य पर्याय है या उसकी देव पर्याय है। तो अपनी योग्यता से दोनों को मिलाकर, क्योंकि अभी जीव के परिणाम है वो मनुष्य गति,
हाँ
नहीं यहाँ कौन सी गति बांध रहे हो नहीं लेना, अभी गति योग्य परिणाम है ना, अभी हमारे परिणाम कैसे गति का उदय है, मनुष्य गति का अभी हमारा उदय चल रहा है, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, और अभी हमारे परिणाम कैसे है, मनुष्य गति के योग्य परिणाम है। जैसे मनुष्य के जैसे खाना पीना रहना, कपड़े डालना या पैसे कमाना, बच्चों को यानी कुटुंब की तरह से ऐसे रहना, ये सारे मनुष्य के योग्य जो भाव है वो अभी चल रहे हैं। भले अभी देवगति बांधेगा, बांध रहा है देवगति, परंतु अभी मनुष्य गति का उदय है, तो अपने परिणाम मनुष्य के योग्य परिणाम है, तो उसको गति भाव कहते हैं। हाँ गति बांधी, देवगति का उदय आएगा, तो गति का उदय होगा। हाँ देव की पर्याय है वो जीव की पर्याय, अभी देवगति के उदय में है और उसके परिणाम देव जैसे हैं। अभी जब देवगति में है तो आगामी वो आयु मनुष्य गति की बांध रहा है, मनुष्य आयु बांध रहा है और मनुष्य गति के नाम कर्म बांध रहा है। तो जिस नाम अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना ही लेना अभी कौन सी पर्याय है, क्योंकि उसमें उलझेंगे वो सारा करना नहीं होगा। तो यहाँ मनुष्य पर्याय चल रही है चीज, वो अपनी योग्यता से वहाँ रहता है। बात यह कहाँ से निकली कि क्या यह अपना मानता है ना कि शरीर का मैं करता हूँ, तो शरीर को साथ में ले जा सकता है वो अन्य भव में, क्योंकि शरीर की भी अवस्था अपने कारण से इस जीव के साथ जो बंधन रूप अवस्था है वो इतने ही काल की है। परमाणु भी अपनी योग्यता से अन्यत्र चला जाएगा। अभी हम देखते हैं वो भूकंप में जीव वहाँ गड़ा गया, उसका जीव जो है वो निकल गया, अन्य पर्याय में चला गया, और वो शरीर का जो परिणमन होना है, जिस रूप वो पुद्गल परिणमित होना है, आगामी जो स्कंद उसका बनना है, अभी शरीर रूप है, फिर अन्य मिट्टी रूप या अन्य कुछ अन्य पुद्गल रूप हो जाएगा, तो उसकी अपनी योग्यता से बन रहा है और जीव अपनी योग्यता से अन्यत्र चला गया। मानता क्या था, मैं इस शरीर का सारा करता हूँ। देखो यहाँ लिखा है ना, पूरी तरह संभाल के रखते रखते भी एक दिन यही होगा कि यह यही पड़ा रहेगा और तुझे इसे छोड़कर जाना होगा, फिर भी इसमें तुझसे कर्तृत्व का अभिमान नहीं छूटता। यानी इतना सब देखते, दूसरों का भी देखते और अपने को भी पक्का पता है कि मरण होने पर ये यही रहने वाली है बॉडी और मैं तो चला जाऊंगा, फिर भी इसके करने धरने का अभिमान कर्तृत्व बुद्धि पर यहाँ, जिसको कर्तृत्व बुद्धि छूट गई, सम्यक तो हो गया, चौथे पांचवे गुणस्थान वाला भी है, वो तो वैसी क्रिया करते हुए दिखाई देगा, वो भी शरीर को यानी वो भी नहाएगा करेगा ठीक ठाक रहेगा, तो उसकी भी क्रियाएं वैसी दिखेगी, परंतु वो अभी कर्तृत्व बुद्धि नहीं रही। इस शरीर पर तेरा रंच मात्र भी तो वश नहीं चलता, ये तेरे बाल काले से सफेद तेरे से पूछ कर हुए होंगे, अपने को पूछ कर न रहते हैं वहाँ और न काले सफेद होने पर भी, अपने को अपनी इच्छा से तो नहीं होते सफेद। चेहरे पर जो झुर्रियाँ दिखाई दे रही है वे भी तेरी स्वीकृति से पड़ी होंगी, यानी ये तो अपने बस की बात नहीं है, तो ख्याल में आता है। हाँ मराठी में सुरकुत आनंदन ना, अभी बुढ़ापे में जो ऐसे हो जाते हैं। हाँ झुर्रिया यहाँ तो लिखा है झुर्रिया, समझ गए ना उसका अर्थ, अपनी भाषा में समझ जाना। यदि नहीं तो फिर यह क्यों नहीं स्वीकार करता कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग कहाँ करता क्या काम, शरीर भी तो पर है जिस पर तू अपना कर्तृत्व थोप रहा है। यानी सफेद बाल हो गए, ऊपर से काला रंग लगाने से मैं मान लेता मेरे बाल काले हो गए, परंतु है तो सफेद है ना, और मानता क्या है कि चलो मैं अभी कुछ यंग हो गया या यंग दिख रहा है, दूसरों को दिखाई दे रहा, तो उसी में जीव उलझा रहता है, उसमें परिणमन तो कुछ नहीं कर सकता। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि जानना देखना तो आत्मा का स्वभाव है, वह तो करना ही पड़ेगा, फिर उसमें करना पड़ेगा की बात है, कर्तृत्व है ना, तो कहीं ना कहीं वो कर्तृत्व लगाएगा, तो करना ही पड़ेगा। उसका जोर कहाँ आता है देखो, जिसका निमित्त पर जोर है, निमित्त से कार्य होता है जो मानता है। अरे ऐसा नहीं, अरे पर निमित्त तो होना ही पड़ेगा, निमित्त तो होगा ही कुछ न कुछ, ऐसा नहीं, इतना नहीं मानता कि निमित्त की उपस्थिति होती है सहज। तो वो तो निमित्त कोई ना कोई तो होगा ही नहीं, निमित्त पर आरोप, निमित्त का नाम लेकर भी वो कर्तृत्व तो बुद्धि का ही पोषण करना चाहता है। तो जानना यानी जानने का जो कार्य है वो तो करना पड़ेगा, उनसे हमारा कहना है कि उसमें करना क्या पड़ेगा, वह भी तो सहज होता है। जब कोई शब्द हमारे कान पर पड़ते हैं, आवाज आती है, तो हम सुनने का कार्य करते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सुनाई देता है यानी ज्ञान उसका सहज होता है। सामने चीज है तो देखने के लिए आप क्या करते हो, वो दिखाई देता है, वो तो ज्ञान उसका होता है, सहज होता है, करने से होता है ऐसा नहीं, वो होता है बस। क्या जाने और क्या न जाने इसका विवेक तो करना ही पड़ेगा। फिर प्रश्न वाला क्या पूछता है, क्या जानना और क्या नहीं जानना, ये तो हमारी बात है ना, वो तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। देखो हमारा अभी उपयोग बाहर है, अभी अंदर ले जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो ये करने की बुद्धि है ना अभी तक उसमें। ऐसा थोड़े ही चलेगा कि चाहे जो जाने देखते रहो, कुछ तो मर्यादित होना ही पड़ेगा, कुछ तो नक्की करना होगा, अभी भी पड़ेगा करना होगा, ये चाहिए वाली बात हमेशा आएगी उसकी चर्चा में। क्या हम अपने ज्ञान दर्शन को ऐसा ही छुट्टा छोड़ दे, सांड जैसा, सांड मालूम है क्या है, हाँ वो पहले वो भगवान के नाम पर छोड़ देते थे, वो कहीं पर घूमे कुछ भी करे तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, सांड जैसा, जो चाहे जहाँ मुंह मारता फिरे, क्या प्रश्न है, हाँ जो चाहे जहाँ मुंह मारता फिरे, कम से कम उसे तो स्वभाव सन्मुख करना ही पड़ेगा। ये ना उपयोग जो है यहाँ यहाँ भटक रहा है, तो ऐसे हम उसे छोड़ दे क्या, वो शान के माफक जैसे वो कहीं भी घूमता है, हाँ तो उसको तो लाना कि नहीं लाना स्वसन्मुख, यह सब कैसे चलेगा कि कुछ नहीं करना है कुछ नहीं करना है। ज्ञान को स्वभाव सन्मुख करो, कम से कम इतनी बात तो रहने दो, बाकी तो सब आपने हमारे हाथ की छूट निकाल दी, तो इतना तो रहने दो कि अभी हम स्वसन्मुख परिणाम करें। यदि ऐसा कोई कहे तो उससे कहते हैं, भाई ज्ञान को स्वभाव सन्मुख करने के विकल्प से ज्ञान स्वभाव सन्मुख नहीं होता, आत्मानुभव होता है तब ज्ञान स्वभाव सन्मुख होता है, वो भी सहज होता है, उसके पहले ऐसे उस भूमिका में विकल्प भी आते हैं, परंतु विकल्प के कारण ज्ञान स्वभाव सन्मुख नहीं होता, अपितु इस विकल्प के भी भार से निर्भर होने पर ज्ञान स्वभाव सन्मुख ढलता है। मुझे उपयोग को अंदर ले जाना है, मुझे उपयोग को सन्मुख ले जाना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे प्रैक्टिकल करना है, इस उलझन में इस चिंता में जब तक हम हैं, तब तक उपयोग अपने को नहीं पकड़ेगा। बस उपयोग अभी क्रमबद्ध का निर्णय करता रहे, सर्वज्ञ का निर्णय करता रहे, आत्मा की महिमा में वो उलझा रहे और न जाने कब छूट जाता है, आत्मा को पकड़ लेता है, वो भी सहज होता, वो करने से नहीं होता। जब सारे ही निर्णय ठीक हो गए और एकाग्रता की भूमिका में वो उपयोग अपने को पकड़ लेता है, उसे बोलते बोलते नहीं होगा, क्योंकि अभी नीचे की भूमिका है। मुनि योग्य भूमिका में तो वो बीच बीच में उपयोग अपना अपना आश्रय लेकर भी वो कार्य बाहर भी चलता होता दिखाई देता है और उनका भी अंतरंग में वो उपयोग को अंदर बाहर भी चलता रहता है। नीचे की भूमिका में, एकाग्रता की भूमिका में वो अपने को पकड़ेगा, परंतु वो एकाग्रता में भी उसमें तो वो निर्णय वाली भी बातें चलेगी पहले विकल्पात्मक भूमिका में। अकेला मैं अंदर ले जाऊं विकल्प, परंतु वो कुछ है नहीं निर्णय, आत्मा का स्वरूप पता नहीं है और चलो अंदर ले जाओ, चलो ऐसा ही मैं आत्मा हूँ शुद्धात्मा हूँ, ऐसा खाली कहने मात्र से आत्मा का अनुभव नहीं होगा। देखो क्या है कि जिसको अनुभव होता है उसकी भी ऐसी सहज वृत्ति दिखाई देती, तो हम क्या मान लेते, ये ऐसे बाह्य सब कुछ करने से अपना उपयोग अंदर चला जाएगा। जब तक निर्णय नहीं, हमने एक यहाँ लिखा ना कि जब तक परद्रव्य में फेरफार करने की बुद्धि है, जब तक निमित्त से कार्य होता मानता है, जब तक क्रमबद्ध का निर्णय पता नहीं है, जब तक देव गुरु शास्त्र का स्वरूप का निर्णय नहीं है, तब तक ये अपने स्वभाव सन्मुख हो ही नहीं सकता जी। यानी कितना भी आप उसके सामने सब रहस्य खोल दो आत्मा के अनुभव का, वो हो ही नहीं सकता उसको। ज्ञान की प्रत्येक पर्याय स्व कार्य करने में परमुखापेक्षी नहीं है। यानी ज्ञान पर्याय को अपना कार्य क्या करना है, ज्ञान पर्याय का कार्य क्या है दीपाली, जानना, तो उसको परमुखापेक्षी यानी दूसरे की ओर देखना पड़े ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ज्ञान की जो जानने रूप पर्याय है, जानना जानना यह जो कार्य है, यानी ज्ञान में किसको जानना, यह भी ज्ञान अपने अधीन स्ववश से करता है। ज्ञान की पर्याय ज्ञान में से उत्पन्न होती है, सामने के ज्ञेय में से नहीं होती है। यदि ज्ञेय में से ज्ञान उत्पन्न होता है माने, तो हम तो पेंसिल की ओर देखते देखते ऐसा कोई विचार आ जाता है मन में कि अभी रीना क्या करती होगी, उसके बच्चे क्या करते होंगे, वो मन कहीं भटक जाता है। तो सामने तो ज्ञेय पड़ा है, तो ये मन द्वारा यानी आंखों द्वारा चक्षु इंद्रिय द्वारा जानना छोड़कर वो मन के द्वारा अन्य कुछ जानना चल रहा है। यदि ज्ञेय से ही ज्ञान होता है, सामने भगवान के सामने खड़े और मन में मन कहीं भटक कर आता है दुकान में या कहीं और, तो वहाँ ज्ञान की वो पर्याय बदली ना, वो अपने से बदली है। ज्ञेय से ही अगर ज्ञान होता तो जो जो सामने उसी का ज्ञान होना चाहिए था, अन्य का ज्ञान तो नहीं होना चाहिए था। परंतु ज्ञान अपने स्व योग्यता से जानने का कार्य करता है। ज्ञान की प्रत्येक पर्याय स्व कार्य करने में यानी जानने में परमुखापेक्षी नहीं है, यानी उसके पर की अपेक्षा नहीं है। वह अपने में परिपूर्ण है। कौन? एक ज्ञान स्वभाव तो परिपूर्ण है ही, ज्ञान की प्रत्येक पर्याय अपने में परिपूर्ण है। क्यों परिपूर्ण है? कि स्वकार्य करने में पूर्ण सक्षम है, एबल है, एलिजिबल है। अपना अपना कार्य स्वयं करने में उसको किसी दूसरे की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है, पूर्ण सुयोग्य है। देखो कितने कितने विशेषण लगाए। पर्याय को कहा परिपूर्ण है, सक्षम है, पूर्ण सक्षम है और पूर्ण सुयोग्य है। उसकी योग्यता में उसका ज्ञेय भी निश्चित है। देखो ज्ञान का स्वभाव ही पर प्रकाशक है, यानी ज्ञान अपने स्वभाव में से ही अपने और पर को जानते हुए प्रकट होता है। अब उस वो पर कौन होगा, ये ज्ञान की पर्याय निश्चित करती है। और हम किसकी आधार से उसको निश्चय करना चाहते हैं, ज्ञेय को? विकल्प यानी जो राग है, चारित्र गुण की विभाव पर्याय है, हमारी इच्छा है ना कि हम पर को जानना छोड़कर मुझे अपने को जाने, ये विभाव है, चारित्र गुण की विभाव है, इच्छा है ना वो। तो उसके कारण ज्ञान अपना निश्चित करे किसको जानना है, इतना पराधीन ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान की पर्याय सहज ही ऐसी उत्पन्न होती है कि वो अपने ही वो अपना ज्ञेय स्वयं चुन लेती है और उसको जानते हुए प्रकट हो जाती है। जो प्रकट हुई है उसका ज्ञेय आप क्या बदले, अभी हम इसे जानते हैं। अब इसको जानते हुए जो ज्ञान पर्याय प्रकट हो गई, अब उस ज्ञान पर्याय तो हो चुकी ना, अभी उसको बदलना क्या है। अब आगामी पर्याय मान लो कि उसे आत्मा की सहज ऐसा महात्म्य आ गए, तो आगामी पर्याय अपने आत्मा को ज्ञेय करते हुए प्रकट हो जाती है, तो वो आत्मानुभव की पर्याय। परंतु वो ज्ञान अपनी योग्यता से चुन लेता है, इसने इच्छा की, विकल्प किया, इसलिए नहीं प्रकट हुआ। मानते क्या हम, हमने विकल्प किया तो हमने उपयोग को अंदर हम ले गए, ऐसा नहीं है। वहाँ ज्ञान की स्वतंत्रता को नहीं माना, ये सारी मान्यता में पहले हमारे जो कुछ अंदर पड़े हैं मान्यता में गड़बड़ घोटाला, उसका हम ज्ञान करें तो वो मान्यता के घोटाले चले जाते, उसको भी निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। जब हमें पता चल जाता है कि ये गलत मान्यता है और सही मान्यता क्या है पता चल जाता है, तो हो गया उसका ज्ञान। तो उसकी योग्यता में यानी ज्ञान की पर्याय की जो योग्यता है उसमें उसका गेय भी निश्चित है। ज्ञान की जिस पर्याय में जिस गेय को जानने की योग्यता है वह पर्याय उसी गेय को अपना विषय बनाएगी, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं चल सकता। अपने ज्ञान पर्याय अपने ज्ञान के कारण हो रही है। भगवान ने जाना है मेरा गेय कौन सा, इसलिए नहीं हो रही है। ज्ञान अपनी स्वयं की योग्यता से वो एक एक पर्याय जो निश्चित है, हमने देखा ना अनादि अनंत की एक ज्ञान गुण की भी सारी पर्याय निश्चित है और उस पर्याय में कौन सा गेय झलकेगा ये भी निश्चित है। वो क्यों निश्चित है? क्योंकि ज्ञान में ही ऐसी योग्यता है कि वो अपना गेय स्वयं चुने। पराधीनता नहीं है ना, भगवान ने जाना इसलिए चुनना पड़ा ऐसा नहीं है, वो सहज है उसका कार्य। यह एक ध्रुव सत्य है, ध्रुव सत्य ने कभी नहीं बदलने वाला ऐसा जो सत्य है कि गेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता। पत्नी जी है ना कि ज्ञान अपने कारण से होता है, गेय के कारण नहीं होता। सामने गेय होता है बस इतना है, अपितु ज्ञान के अनुसार गेय जाना जाता है। ऐसा क्यों? जो शास्त्र में उदाहरण आता है, कोई दूर आदमी बैठा है और वहाँ उसके सिर के पास मच्छर मंडरा रहे, तो उसको क्या लगता है दूर से? अरे इसके काले घुंघरालू बाल है। तो गेय के जैसा ज्ञान अगर होना होता तो जैसा है वैसा ज्ञान होना चाहिए था, परंतु इसे वो बाल लग रहे हैं, तो वो ज्ञान अपने अनुसार से परिणमित हुआ है, गेय के कारण वो नहीं हुआ है। तो ज्ञान के अनुसार गेय जाना जाता है, अन्यथा ऐसा क्यों होता है कि जो गेय सामने है उसका तो ज्ञान नहीं होता और जो गेय सामने नहीं है क्षेत्र काल से दूर है उसका ज्ञान होता दिखाई देता है ना। बैठे तो यहाँ है और मन में तो हमारे बच्चों की कुछ न कुछ या घर की कुछ चिंताएं हो या कुछ अन्य विचार आ जाता है बीच में, तो अगर गेय के कारण ज्ञान होना है तो शास्त्र का अभ्यास चल रहा है तो इसी का ज्ञान होना चाहिए था। बीच में ही मन कहीं तो दौड़ मारकर आता है ना, कहीं घूम कर आ जाता है वापस, तो ऐसा क्यों होता है? नवविवाहित ऑफिसर को सामने बैठा क्लर्क दिखाई नहीं देता, अपितु ऑफिस से दूर घर में या पियर में बैठी हुई पत्नी दिखाई देती है। अभी जिसकी जो रुचि जहाँ पड़ी है वो उसको दिखाई देगा वहाँ, या कोई ऐसे विचार आ जाएगा। इसी प्रकार का एक श्लोक प्रमेय रत्नमाला में आता है। ये प्रमेय रत्नमाला आदि जो न्याय ग्रंथ हो गए उसमें आता है। पिहिते कारागारे तमसी च सूची मुखाग्र दुर्भेद्य मय च निमीलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। ये आचार्य अनंत वीर्य ने प्रमेय रत्नमाला लिखा है, उसकी जो टीका है। देखो पिहिते कारागारे यानी कारागार में बंद कोई कामी रहता है, कामी यानी जिसको कोई प्रिय कर जिसका है, दो व्यक्ति है या किसी का जो यानी इच्छुक। कारागार में बंदी गृह में उसको बंद कर दिया, तुरंग में डाल दिया। वो कहते मुखा द्रव्य मई तो निमित था कि कांतानंद व्यक्तम, ये तो उसके जो है ना उसके ऊपर से लिया है। हाँ भावनुवाद है उसके पहले दूसरे श्लोक में, यानी कोई जो कामी ने भी कोई प्रिय कर उसमें के दो व्यक्ति में, एक लड़का है लड़की, अभी वो लड़के का लड़की से बहुत प्यार है, उस लड़के को कारागृह में बंद कर दिया। वो कैसा कारागृह है तो वहाँ आगे देखते हैं कि यद्यपि कारागार का द्वार बंद है, वो बंद है, रूम बंद है एकदम, एकांतवास जिसको कहते हैं, और अंधकार इतना सघन है, इतना डार्क है वहाँ कि सुई के अग्रभाग से भी नहीं भेदा जा सकता। वो तो अंधकार कोई सुई के अग्रभाग से भेदा जा ही नहीं सकता है, परंतु इतना घना अंधकार है कि उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल कुछ नहीं। तथा मैंने अपने दोनों नेत्र बंद कर रखे। वो क्या कहता है वो लड़का, क्या कहता है कि मुझे बंद कारागृह में एकांतवास में डाला है, इतना अंधकार है कि वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता, इतना होते हुए भी आँख भी बंद कर दिए, आँख भी खुले नहीं है, तथापि मुझे अपनी प्रिया का मुख स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इतना करते हुए भी उसको अपने प्रिया का मुख दिखाई देता है। इससे यह सिद्ध है कि गेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता, अपितु गेय के अनुसार गेय जाना जाता है। ज्ञान के अनुसार गेय जाना जाता है, यानी उसकी ज्ञान की कौन सी पर्याय होनी है वो उसके अपने अधीन है। इसका तात्पर्य यह है कि क्षोक्षम ज्ञान में जिस समय जिस गेय को जानने की योग्यता होती है उस समय वही गेय ज्ञान का विषय बनता है, अन्य नहीं। अब मेरा प्रश्न ऐसा है, यहाँ क्षोक्षम ज्ञान ऐसा शब्द बीच में क्यों डाला? केवल ज्ञान के लिए क्या? हाँ देखो, उनको वो बराबर ख्याल नहीं आया, एक सर्वसम शब्द क्यों डाला। हाँ दीपाली, आपके कुछ ख्याल में आ गया? देखो यहाँ क्या कहते हैं, फिर पढ़ेंगे। देखो, सूक्ष्म ज्ञान में जिस समय जिस गेय को जानने की योग्यता होती है, उसका अर्थ क्या होता है कि सूक्ष्म ज्ञान एक साथ सभी गेय को जान नहीं सकता। केवल ज्ञान एक समय में सभी गेयों को जानते हैं, यानी कोई गेय उनसे ज्ञान से छूटता ही नहीं है। तो किसको जानना और किसको नहीं जानना, ये जो भेद है वो किसमें होगा? सूक्ष्म ज्ञान में। केवल ज्ञान में तो सारे गेय हर समय ज्ञान में आ रहे हैं, उनमें तो ऐसा नहीं कि विशिष्ट को जानना है, अन्य को नहीं जानना या जानना। ये तो किसी विशिष्ट गेय को जानना, ये कार्य कहाँ चल रहा है? सूक्ष्म ज्ञान में। केवल ज्ञान में भी निमित्त कौन है केवल ज्ञान का? तो लोकालोक उसका निमित्त कहाँ है? क्योंकि गेय रूप है ना वहाँ, कि गेय है ही नहीं और उसको जान रहा है, ऐसा भी नहीं। वो ज्ञान अपनी योग्यता से सारे गेय को जानता है, वो ज्ञान की योग्यता होगी, परंतु गेय है ही नहीं और ये जान रहा है, ऐसा भी नहीं है। है नहीं, नहीं सामने नहीं है, ये वर्तमान में नहीं है, इतना आप कह सकते हैं। परंतु वो तो त्रिकाल, वो हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव में वो त्रिकाल सारा आ जाता है। कल हमने चर्चा की थी ना, प्रत्येक द्रव्य में उसके अनंत पर्याय है। काल प्रवाह अगर देखेंगे वो तो अपने अपने जगह पर खचित है सारी पर्याय। तो यहाँ विषय क्या चल रहा है कि जो क्षोक्षम ज्ञान है, तो वो जो क्षोक्षम ज्ञान है, हाँ क्षोक्षम ज्ञान यानी चर्चा करेंगे, केवल ज्ञान है वो क्षायिक ज्ञान है, यानी वहाँ ज्ञानावरण कर्म का सारा ही क्षय हो चुका, यानी ज्ञान पूर्ण विकसित है। क्षयोक्षम किसे कहते हैं कि थोड़ा उघाड़ रूप है और बाकी सारा बंद है, आवरित है, आवरण है उसके ऊपर। जैसे हम ओढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं आप उसको, शाल, तो छोटी होगी, समझो बच्चे की शाल हमने ओढ़ ली तो क्या होगा, सिर ढकेंगे तो पैर खुले रह जाएंगे और पैर ढकेंगे तो मुंह पूरा खुला रह जाएगा, तो पूरा आवरण नहीं होता। तो थोड़ा आवरण हुआ और थोड़ा खुला रहा तो उसको कहते हैं क्षयोक्षम। तो क्षोक्षम ज्ञान अभी जो है ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, ये सारे है वो क्षोक्षम ज्ञान है। और केवल ज्ञान वो कैसा है? क्षायिक ज्ञान। वहां तो पांचों ही जो ज्ञानावरण कर्म है उन सारे का ही क्षय हो जाता है। और पूर्ण विकसित ज्ञान पर्याय, जिसको हम सर्वज्ञ की पर्याय कहते हैं ना, सर्वज्ञ का ज्ञान या केवल ज्ञान, उसी को क्षायिक ज्ञान भी कहते हैं। और हमारा ये सारे 12वें गुणस्थान तक का है वो सूक्ष्म ज्ञान है। तो अभी हमारे तो सारे ही गेय हमारे ख्याल में नहीं आते एक साथ, एक तो क्रम से आते हैं और वो भी कुछ गेय। अभी हम सामने वाली चीजें देख रहे हैं तो पीछे वाले हम नहीं देख रहे, तो वो गेय उसका निश्चित है, थोड़ा है। तो ये किस गेय को विषय जान करना, ये योग्यता उस ज्ञान में ही पड़ी है। और हमारा लक्ष्य कहाँ है? सामने चीज आती है तो हमें ज्ञान होता है, तो किस चीज को ज्ञान विषय बनाए वो ज्ञान की अपनी योग्यता से हो जाता है। देखो ये फिर पढ़ते हैं, सूक्ष्म ज्ञान में जिस समय जिस ज्ञेय को जानने की योग्यता होती है उस समय वही ज्ञेय ज्ञान का विषय बनता है, अन्य नहीं। यानी ज्ञान स्वाधीनता से उसको जानता है, ये आया इसलिए ज्ञान हुआ, इसी पराधीनता ज्ञान में नहीं है। इस बात को न्याय शास्त्र के निम्नलिखित सूत्र से भली प्रकार समझा जा सकता है। न्याय शास्त्र नाम का ये अलग पूरा शास्त्र है, उसमें वो परीक्षा मुखादि बहुत सारे ग्रंथ है, प्रमेय कमल मार्तंड वगैरह वगैरह, तो उसमें से ये सूत्रों के द्वारा एक एक न्याय यानी लॉजिक एक बात सिद्ध करते हैं, फिर उससे और सिद्ध करते हैं। फिर हम सीखते हैं ना कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का क्यों नहीं कुछ करता, तो उसके लिए आप क्या क्या कारण बताते हो? हाँ दीपाली, आपको मालूम है ना दो तीन कारण, एक द्रव्य अन्य द्रव्य की पर्याय क्यों नहीं करता? हाँ, उसका अपना अपना स्व चतुष्ट है, पर चतुष्ट में वो प्रवेश ही नहीं कर सकता, एक बात है। और क्या? हाँ, तक पर्याय में वो पुद्गल की पर्याय में, हाँ, अत्यंता यानी छह द्रव्य में आपस में वो अत्यंता भाव है। और क्या है? अस्ति नास्ति है, वस्तुत्व गुण है कि वस्तुत्व गुण के कारण अपना अपना कार्य करे, ऐसी शक्ति प्रत्येक द्रव्य में पड़ी है और वो निरंतर हो, ऐसी भी शक्ति है। इसलिए सारे पर से हम क्या सिद्ध करते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, यानी उसमें निमित्त मदद असर सहाय कुछ संस्कार डाले, ये कुछ भी नहीं। उसको भले शब्द ऐसे हो गए, वो निमित्त हुआ, वो सहाय हुआ, परंतु उसका अर्थ वो उसकी उपस्थिति है, बस प्रेजेंस है, इतना ही। उसने इस द्रव्य की पर्याय में कुछ थोड़ा तो उसको पुषक किया, थोड़ा तो मदद रूप हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनुकूल होता है उसको निमित्त नहीं कहते, किसको कहते निमित्त? अनुकूल होने का भी आरोप, यानी अनुकूल भी उपचार से कहते हैं, यानी कार्य में अनुकूल होता है उसको निमित्त नहीं कहते। अनुकूल होने का भी उपचार होता है, क्यों उपचार होता है? क्योंकि वो सामने खड़ा है। ऐसे कोई अभी अभी केसेस अभी देखते हैं टीवी पर सीरियल अलग अलग, तो खून का आरोप आया, क्यों आरोप आया? क्योंकि वो सामने था या वो वहाँ आके गया था, ऐसा सिद्ध होता है, कुछ पुरावे मिल गए कि ये व्यक्ति यहाँ इन बिटवीन ये पीरियड में यहाँ आया था, तो उसने खून किया और आरोप उस पर आया, क्यों? क्योंकि उसकी उपस्थिति वहाँ थी। वैसे ये निमित्त पर जो वहाँ उपस्थित है उस पर आरोप आता है कि इसने कार्य किया, वो कार्य कुछ नहीं करता है, वो तो अपना कार्य स्वयं उपादान की योग्यता से उसका जो चल रहा है वो कर रहा है, वो कार्य और ये कार्य में हमें लगता है कि अरे इसके कारण ये हुआ दिख रहा है, ये आरोप आ गया उसका। तो निमित्त में भी अनुकूलता का आरोप आता है, अनुकूल नहीं होता वो। वैसे क्या कहते हैं यहाँ? हाँ, ये न्याय शास्त्र की बात चल रही थी। तो ऐसे ऐसे अलग अलग सिद्धांत जिसमें बताए जाते हैं उसको कहते हैं न्याय शास्त्र। ये बड़े न्याय शास्त्र का अर्थ ख्याल में आया, न्याय ने लॉजिक। तो उसमें ये सूत्र बताया है नीचे, स्वावरण क्षयोक्षम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। स्व आवरण क्षयोक्षम, स्वावरण में अपना अपना आवरण, नीचे उसका अर्थ देखो, स्वावरण क्षयोक्षम है लक्षण जिसका, ऐसी योग्यता ही यह व्यवस्था करती है कि ज्ञान किसको जाने। देखो ये तो न्याय है, नियम है, इसको फेरा नहीं जा सकता। क्या नियम बताते हैं? कि ज्ञान की पर्याय में ही ऐसी योग्यता है कि स्वावरण क्षोभम, अपने ऊपर उस पर्याय पर जो आवरण है उसका क्षोभम, उसका उघाड़, ऐसी जिसका लक्षण है, ऐसी योग्यता, यानी यहाँ कर्म की बात नहीं लेना है, वो क्षोभम है, वो ज्ञान को कहते हैं। और कर्म में जो क्षोभम हो उसकी बात नहीं यहाँ, यानी कर्म में जितना क्षोभम होता है उतना ज्ञान जानता है, ऐसी नहीं कहा यहाँ, देखो ज्ञान भी हीन अधिक होता है, ज्ञान का उघाड़ कम ज्यादा हो रहा है, कभी कम जानता है कभी जाता है, ज्यादा जानता है कभी किसको जानता है कभी किसको जानता है। ये जो उसका कम ज्यादा उघाड़ है उसको कहते स्वावरण क्षोभ। तो ज्ञान अपने से ही कम ज्यादा खिलता है वो कहो, तो उसका जो ऐसी जिसकी योग्यता है यानी ज्ञान की जानने रूप जो योग्यता, वही क्या व्यवस्था करती है कि ज्ञान किसको जाने, यानी ज्ञान की जो पर्याय है उसमें किसको जाने, कितना जाने, कैसा जाने, ये सारी व्यवस्था है। वो ज्ञान की अपनी योग्यता है। केवल ज्ञानी सबको जानते हैं तो उनके ज्ञान में ही ऐसी योग्यता है कि वो सबको जाने, एक साथ जाने, बिना सहायता के जाने, ये सारी उस ज्ञान पर्याय की योग्यता है। वैसे हमारा जो क्षोभसम ज्ञान है, ये क्षोभसम नाम तो कर्मों की अपेक्षा पड़ा है, परंतु अपना जो ज्ञान का उघाड़ है वो कर्म ने कराया कि ज्ञान का अपना कार्य है? ज्ञान का अपना कार्य है ना, जैसे अभी सूरज हम दिख रहा है, वो हम धूप दिख रही है और बीच में मेघ आ गए तो धुंधला सा दिख रहा है अभी प्रकाश। जो धुंधला प्रकाश दिख रहा है, देखो प्रश्न क्या है, जो धुंधला प्रकाश दिख रहा है वो धुंधलापन के लिए हम वो मेघ को निमित्त कहते, परंतु वो जो प्रकाश है वो तो सूरज का ही है, वो मेघ ने प्रकाश नहीं लाया है। वैसे जो ज्ञान की जिसको जानने की जो योग्यता है वो ज्ञान की अपनी है, उस पर्याय में ही ऐसी पात्रता है कि किस ज्ञेय को कितना जाने। हमारी क्या पात्रता है, अभी हम स्कंद रूप पेंसिल को जान रहे हैं, अभी इसके एक एक परमाणु के जानने की हमारी अभी पात्रता ही नहीं है ज्ञान की। तो हमारी ज्ञान की पर्याय में ही ऐसी योग्यता है कि इतने ऐसे स्थूल स्कंधों को जाने। ये बहुत, ये रूम में सारे ही जो रूम हमें दिखाई देती है, यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा खाली लगता है, यहाँ तो अनंतानंत पुद्गल के अनंतानंत स्कंद खचोखच भरे पड़े हैं, परंतु हमारे ज्ञान की ऐसी योग्यता ही नहीं है कि हम उन्हें जाने। तो हमारी ज्ञान पर्याय अपनी योग्यता से अभी जो हमारा ज्ञेय जानने में आ रहा है वो निश्चित करते, कौन निश्चित कर रहा है, ज्ञान निश्चित कर रहा है। हमें क्या लगता है, हम इतनों को ही क्यों जान रहे हैं, क्योंकि सामने बैठे इसलिए इतनों को जान रहे, वो सामने है इसलिए हम जान रहे, तो ऐसा नहीं कहते। न्याय शास्त्र क्या कहता है, या वस्तु स्वरूप क्या है कि ज्ञान अपनी हो गया, अभी सामने तो इतने बैठे और हम तो कहीं अन्य, वहाँ कितनी भीड़ इकट्ठी हुई थी, उसको अगर हम अपना लक्ष्य करें ज्ञान के पर्याय, या कल टीवी में हमने क्या न्यूज में देखा था, उसको अगर हम अपने ज्ञान पर्याय, अपने पर्याय को निश्चित करके उसको जानते हुए प्रकट होती है, तो ज्ञेय के कारण नहीं हुआ। तो ज्ञान में ही पर्याय में ऐसी योग्यता है वो कि अपना ज्ञेय खुद निश्चित करे, यहाँ स्वतंत्रता की ओर अपना लक्ष्य केंद्रित करे, अपना ध्यान आकर्षित करे। देखो यहाँ सूक्ष्म ज्ञान किसको जाने और किसको न जाने इसकी चर्चा चल रही है। ये मैंने प्रश्न पूछा था ना, सूक्ष्म ज्ञान को क्यों लिया, तो केवल ज्ञान में तो यह प्रश्न ही संभव नहीं है, क्योंकि वह तो एक समय में ही लोकालोक को जानता है, यानी वो किसको नहीं जानता का सवाल ही नहीं पैदा होता। सारा ही जान लेते हैं तो उसमें कुछ किसको नहीं जानने का तो सवाल ही नहीं है। बौद्धों का यह कहना है कि ज्ञान ज्ञेय से उत्पन्न होता है, वो बौद्धों में, बौद्धों का कहना है, यानी बौद्ध होने के लिए उनके जाति में उत्पन्न नहीं होना पड़ता। ये जो जो जैन शिष्य है, पहले ऐसी पद्धति थी कि जो ये सांख्य मत ऐसा कहता है, बौद्ध ऐसा कहता है, यानी वो जो जैन होकर भी जो ऐसा मानते हैं कि जो ज्ञान ज्ञेय से उत्पन्न होता है उनको बौद्ध कहा। बौद्ध कहने के हमारा क्या, अरे वो क्षणिकवादी बौद्ध, ऐसा नहीं। यदि हमारे मान्यता में ऐसा है कि ज्ञेय से ज्ञान उत्पन्न होता है तो ये बौद्ध मतवादी हुआ। बौद्ध का, बौद्धों का यह कहना है कि ज्ञान, यानी जो बौद्धों का जो मत है, उनके शास्त्रों में क्या लिखा है, मान्यता क्या है उनकी, बौद्धों की मान्यता क्या है कि उनके भी प्रिंसिपल्स है ना, जैसे जैन दर्शन है वैसे बौद्ध दर्शन है, तो उसमें उनके प्रिंसिपल्स क्या है, कि ज्ञान गेय से उत्पन्न होता है, ऐसे उनकी मान्यता है। गेयाकार होता है और गेयों को जानने वाला होता है, जिसे वे तदुत्पत्ति तदाकार और तदध्यवसाय के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैनों को उक्त बात स्वीकार नहीं है। ये भी बौद्धिज्म तो हमने सीखा नहीं है, तो ये उनके जो डिटेल्स है ना, वो तो ऐसा भी मानते हैं कि ये आत्मा है और ज्ञान उसके साथ समवाय संबंध से जुड़ा हुआ है। वो उनमें ज्ञान विज्ञान ऐसे कोई कोई बहुत चर्चा लंबी चौड़ी है, तो उसमें हम नहीं उलझे तो अच्छा है, क्योंकि अपनी सारी चर्चा है पता नहीं और उनमें उलझने से कुछ तो पहले हम तो निश्चित करेंगे कि ज्ञान अपनी योग्यता से ही गेय को जानता है। बौद्ध क्या मानते हैं कि गेय के कारण ज्ञान उत्पन्न होता है, तो वो कैसे उत्पन्न होता है, इसलिए ये तीन शब्द डाले, तदुत्पत्ति तदाकार यानी गेय का आकार रूप ज्ञान होता है और फिर तदध्यवसाय फिर उसका ज्ञान होता है वगैरह वगैरह वे लोग मानते नहीं। तदध्यवसाय यानी उसका ज्ञान, उस रूप का ज्ञान, ये अनध्यवसाय नहीं है, अध्यवसाय है। इस संदर्भ में वे जैनों से पूछते हैं, अभी उनका यह मानना है तो फिर वो जैनी उनसे प्रश्न करते क्या कि यदि ज्ञान गेय से उत्पन्न नहीं होता तो फिर तुम्हारे यहाँ ज्ञान अमुक गेय को ही क्यों जाने, अन्य को क्यों नहीं, इसका नियामक कौन होगा। वो एक दूसरे से चर्चा करते ना, पहले तो ऐसे अन्य अन्य मती तो आपस में चर्चा करते थे या प्रश्न दूसरे एक दूसरे से पूछते थे कि तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, हमारा कहना ऐसा ये ठीक है। यदि आप ऐसा कहते हो कि गेय से उत्पन्न नहीं होता है ज्ञान, तो फिर ज्ञान अमुक गेय को ही क्यों जाने, अन्य को क्यों नहीं, इसका नियामक कौन होगा, यानी ज्ञान किसको जाने। हम क्या कहते हैं, सामने गेय है इसलिए ज्ञान हुआ। आप मानते हो कि गेय के कारण ही ज्ञान होता है, तो ज्ञान किसको जाने ये कौन निश्चित करता है, ऐसा उनका कहना है। बौद्धों के यहाँ तो जो ज्ञान जिस गेय से उत्पन्न होता है उसी को जानता है, यह व्यवस्था है, यानी ऐसा उनकी मान्यता है। ख्याल आता है कि बहुत भारी हो रहा है। हाँ, जैनों में इस संदर्भ में क्या व्यवस्था है, उसके उत्तर में उक्त सूत्र आया है। उक्त सूत्र ने जो हमने देखा था ना कि अपने आवरण स्वावरण सूक्ष्म जिसका लक्षण है, ऐसी जो योग्यता यानी किसको जानना, ऐसी जो योग्यता ज्ञान में ही पड़ी है, वह योग्यता ही किस गेय को जानना इसको निश्चित करती है। जिसका आशय यह है, यानी उस सूत्र का ऐसा आशय है कि योग्यता ही इसकी नियामक है, यानी ज्ञान की योग्यता ही इसकी नियामक यानी इसको निश्चित करने वाली है कि किस गेय को जानना है। यानी अभी हम यह क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा जान रहे हैं, इसका नियामक कौन है, बोलो दीपाली, आप अभी इस क्रमबद्ध की चर्चा जान रही है, उसका ज्ञान में चल रहा है ना ये सारा, उसका निर्णय हो रहा है, उसका ज्ञान चल रहा है, तो ये जो ज्ञान हो रहा है ये गेय है। क्रमबद्ध पर्याय का जो सिद्धांत है वो हमारा गेय है, ज्ञान उसे जान रहा है, तो ये किसके कारण ज्ञान हो रहा है। सामने पुस्तक लिखी है इसलिए कि केवली भगवान ने जाना, इसलिए तो अपनी योग्यता, ज्ञान की अपनी योग्यता, हमारे प्रत्येक की ज्ञान की अपनी योग्यता से हम इसको जान रहे हैं, तो ये गेय भी ज्ञान की योग्यता से निश्चित हो रहा है। अभी टीवी के सामने बैठकर हम टीवी क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ज्ञान की योग्यता ही इस क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत को जानने की है, तो ज्ञान ही यह निश्चित कर देता है कि वो किसको जाने। ये ज्ञान की योग्यता, वहाँ वो इस योग्यता की ओर हमें यहाँ लक्ष्य देना है। देखो, जिसका आशय है कि योग्यता ही इसकी नियामक है, अर्थात ज्ञान की विवक्षित पर्याय में यानी पर्टिकुलर पर्याय में जानने की क्षमता के साथ साथ यह भी निश्चित है कि वह किस गेय को जानेगी। देखो, यानी ज्ञान की पर्याय में अकेले जानने का सामर्थ्य है इतना ही नहीं, यानी जानने का सामर्थ्य तो है ही है, परंतु किस गेय को जानेगी यह सामर्थ्य भी निश्चित है। इसमें पराधीनता नहीं, ये तो ज्ञान की स्वाधीनता की बात चल रही है। आप ऐसा नहीं समझना अरे वो भी निश्चित है तो हम क्या करें, अभी हमारा ध्येय भी पराधीन हो गया, ऐसा नहीं। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और मैं अपनी योग्यता से गेहूं को जानता हूँ, ये तो महान स्वाधीनता हुई। इसमें पराधीनता मानना नहीं, ये तो अपनी तो स्वाधीनता स्वतंत्रता की बात चल रही है कि हम, यानी वो ज्ञेय सामने आया तो मैं जानूंगी, सामने कोई गुरु आया तो मुझे ज्ञान होगा, सामने पुस्तक है तो मैं जान रही, ऐसा नहीं। ज्ञान अपनी योग्यता से जान रहा है, पहले इसका निर्णय करना। योग्यता को परिभाषित करते हुए, यानी योग्यता की स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया है कि तत्संबंधी आवरण का क्षोभम है लक्षण जिसका ऐसी योग्यता, यहाँ लिखा ना स्वावरण क्षोभम है लक्षण, यानी तत्संबंधी आवरण का क्षोभम, यानी समझो अभी हमारा ये पेंसिल को जानने का कार्य चल रहा है, तो पेंसिल को जानने वाला जो ज्ञान है उसका क्षोभम हुआ। पहले हम पेंसिल को नहीं जानते थे तो पेंसिल ज्ञानावरण कर्म का वहाँ उदय था। पेंसिल को जान रहे हैं तो उस समय वो पेंसिल ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम हुआ। जैसे हम हिंदी जानते हैं तो क्या है, हमारा हिंदी ज्ञानावरण का क्षोभम है, और अभी हम तेलुगु नहीं जानते तो हमारा तेलुगु ज्ञानावरण का उदय है, पूर्ण आवरण है, और जिसको जान रहे उसका क्षोभम है। हम अभी मराठी जानते हैं, संस्कृत थोड़ा थोड़ा जानते हैं, तो आप गुजराती में तो उसका क्षोभम ज्यादा है आपका, उघाड़ ज्यादा है, और मराठी में थोड़ा थोड़ा है, और संस्कृत में और थोड़ा कम है, और फिर कोई जर्मन भाषा जानती हो थोड़ी नहीं, तो उसका तो उदय चल रहा है, वो आवरण पूरा है। तो तत्संबंधी आवरण यानी पूरा आवरण है, पूरा आवरण है तो आवरण का उदय है। केवल ज्ञान में तो सारा आवरण हट गया है, कोई आवरण ही नहीं, आवरण का क्षय हो गया, नाश हो गया पूरा, कोई भी आवरण वहाँ बाकी नहीं है। तो कहते हैं कि तत्संबंधी, तत्संबंधी यानी जिसको वो गेय संबंधी, गेय को जानने रूप जो आवरण था, उस आवरण संबंधी उसका जो क्षोभम है लक्षण जिसका ऐसी योग्यता, यानी पहले इसको जानने की योग्यता नहीं थी, अभी इसको जानने की योग्यता है। वो बड़े बड़े शब्द है ना, तो ऐसा लगता है स्वावरण क्या, उसका क्षोभम क्या, तो इस गेय को जानने की योग्यता अभी प्रकट हुई है। लक्षण जिसका ऐसी योग्यता, अर्थात उस योग्यता में जिस गेय को जानना है तत्संबंधी आवरण का क्षोभम होता है, यानी जिस गेय को जानता है उस गेय को जानने संबंधी पहले आवरण था, पहले आवरण था, पहले उसको नहीं जानता था, अभी वो आवरण क्षोभम हुआ, यानी थोड़ा खुल गया। पेंसिल को जान रहे तो आवरण थोड़ा खुल गया, क्या इसके परमाणु परमाणु को भी जान रहे हैं? नहीं, इसलिए इसको आवरण का क्षय नहीं कहा। विशिष्ट इसके कुछ हद तक हम इसे जान रहे हैं, इसलिए इसको क्षोभम कहा। क्षोभम का से क्या है ना, कुछ हद तक जान रहे हैं। यह सबसे यही सिद्ध होता है कि ज्ञान की प्रत्येक पर्याय का गेय भी निश्चित है और वह उसकी योग्यता में ही सम्मिलित है। अब ये योग्यता उस पर्याय में ही पड़ी है, और पर्याय कौन सी होनी है वो भी द्रव्य में ही सब जैसे खचित है, क्योंकि पर्याय कोई ऐसी अलग चीज नहीं है द्रव्य से भिन्न, द्रव्य की वर्तमान अवस्था को ही तो पर्याय कहते हैं। समझने के लिए हमने गुण पर्याय को विवक्त कर करके समझा द्रव्य को, परंतु वो ऐसा वो द्रव्य में है कि पर्याय में, ऐसी चर्चा नहीं उठाना। द्रव्य तो वर्तमान पर्याय रूप से विद्यमान है, बराबर, यानी पूरा द्रव्य है। अभी उसकी हम एक ज्ञान की पर्याय की योग्यता की चर्चा कर रहे हैं, तो अभी वर्तमान में किसको गेय बनाना, किसको जानना, यह योग्यता भी उसी में है, पर्याय में कहो या द्रव्य में कहो, तो उस ज्ञान में ही ऐसी योग्यता है कि किसको गेय बनाए, किसको विषय बनाए, किसको जाने। विषय ने ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, विषय ने ऐसा कोई अलग अर्थ नहीं लेना उसका। देखो क्या कहते हैं कि इस सबसे यही सिद्ध होता है कि ज्ञान की प्रत्येक पर्याय का गेय भी निश्चित है और वह उसकी योग्यता में ही सम्मिलित है। जब ज्ञान का गेय भी निश्चित है तो फिर यह बात कहाँ रह जाती है कि क्या जाने और क्या न जाने। इसका विवेक तो करना ही होगा, इस दिशा में कुछ न कुछ तो करना ही होगा। यानी ये जो ऐसा प्रश्न करते हैं कि कुछ न कुछ करना होगा, धरना होगा कि क्या जानना चाहिए क्या नहीं जानना चाहिए, ऐसी जो चर्चा चल रही है, तो इस चर्चा की उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान की प्रत्येक पर्याय में अपना गेय निश्चित है। जिसको स्व की महिमा आती है वो अपने आप यानी वो उसकी ज्ञान की पर्याय की ऐसी योग्यता बन जाती है, उसको स्व का पकड़ लेता है, उसका उपयोग अपनी ओर चला जाता है। और बाकी अन्य कोई ऐसा होता है कि बहुत ट्राई करता है फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता है, तो ये विकल्पों के कारण ज्ञान का गेय बदल जाए ऐसी बात नहीं है। तुझे इतना भी भार अपने माथे पर नहीं रखना है तब निर्भर होगा। यानी मुझे जानना है, मुझे जानना है, मुझे जानना है, मुझे जानना है, ये चिंता जब तक होगी, चिंता की बात है, आकुलता की बात है, भार की बात है। वैसे तो वो उपदेश में भी ऐसा आएगा कि क्या पर की ओर ताक रहा है, तू अपनी ओर जा, तू अपनी आत्मा का अनुभव कर ले, वो उपदेश की बात है। यहाँ न्याय शास्त्र सीख रहे, सिद्धांत सीख रहे, सिद्धांत में जो जैसा होता है उसको वैसा प्रस्तुत किया जाता है। उपदेश की भाषा ये चरित्र ग्रंथों की या चरणानियोग की होती है, ऐसा करना चाहिए, पर को छोड़ो, अभी स्वाध्याय में आना चाहिए, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करने वाले को कहेंगे अभी पुस्तक ही पढ़ते रहोगे तो आत्मा का अनुभव भी करेंगे, अभी अपनी आत्मा को देखो, अपनी आत्मा की ओर लीन हो जाओ। वो भाषा अलग अलग है, तो उसमें ये सिद्धांत को नहीं लाना बीच में जब उपदेश चल रहा है। और जब ये सिद्धांत की बात है तो ऐसा नहीं समझना कि अरे ये तो सत्संग होने की बात है, ऐसा नहीं है। या तो हम सिद्धांत समझ रहे हैं। देखो तुझे इतना भी भार अपने माथे पर नहीं रखना है तब निर्भर होगा और तभी ज्ञान की पर्याय का गेय आत्म स्वभाव बनेगा। यानी आत्म स्वभाव को जानते हुए वह ज्ञान की पर्याय प्रकट होगी, अर्थात दृष्टि स्वभाव सन्मुख होगी। दृष्टि के स्वभाव सन्मुख होने का एकमात्र उपाय यही है। क्या उपाय है? हाँ इंद्रबेन, हाँ उसका गेय भी निश्चित है, यानी सारा कुछ निश्चित है, तो हम निराकुल हो गए ना कि अरे हमारा उपयोग कैसे अपनी ओर जाएगा, बार बार तो पर की ओर मुड़ता है। ये जो विकल्पों में हम उलझे रहते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे करना, क्यों, तो उसमें पहले निर्णय आवश्यक है। इतने हम निर्भर हो जाते हैं तो उपयोग स्वयं अपने आत्म स्वभाव को पकड़ लेता है। देखो आगे प्रश्न है, यहाँ यह प्रश्न संभव है कि यदि ऐसी बात है तो फिर यह उपदेश क्यों दिया जाता है। अभी बात की ना मैंने, उपदेश की बात अलग होती है, उपदेश दिया जाता है ना कि दृष्टि को आत्म सन्मुख करो, सन्मुख यानी उसकी ओर, टुवर्ड्स, सन्मुख उसकी ओर मुख मोड़ना, स्वभाव सन्मुख यानी स्वभाव की ओर, उसकी ओर स्वभाव, स्वभावनी तेमा शू लख्यू छे, स्वभावनी सामने, एम स्वभाव सामने जो स्वभाव तरफ, हाँ देखो यहाँ यह प्रश्न संभव है, संभव यानी पॉसिबल है, कोई ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि यदि ऐसी बात है, यदि ऐसी बात है ना, जब जो गेय वही निश्चित है ऐसे जो है, तो फिर यह उपदेश क्यों दिया जाता है। शास्त्र में बातें तो आती है कि दृष्टि को आत्म सन्मुख करो, आत्मा को जानो, क्योंकि ये तो बार बार कह जाता है कि पर की ओर क्यों ताकते हो, अपनी आत्मा को जानो, उसमें ही सुख भरा है, पर में सुख है ही नहीं है, तो आत्मा को जानो तो सुख होगा, तो ऐसा उपदेश क्यों देते हो। इस प्रकार के प्रश्न तो अनेक उठते हैं, उन सब पर आगे चलकर पृथक से विचार किया जाएगा, वो भी क्रमबद्ध क्रम से ही उसकी चर्चा चलेगी। ये सारे प्रश्न है कि फिर पुरुषार्थ क्या कर। हाँ वही दिखेगा, आत्मा की सन्मुख करने जाओ और दिखेगा मन में क्या कि हम कहाँ जाना है, क्या करना है, आज दुकान में कैसे कैसे कारोबारी करनी है, आज का क्या खाना बनाना है, ये निश्चित है ना, उसके अनुसार चल रहा है। ये गेय निश्चित है, इसका अर्थ पराधीनता ऐसी नहीं है। वो क्यों आता है सामने, दुकान ही क्यों आता है, तो वो दुकान भूल जाने के लिए तो आत्मा का ध्यान करना था, तो वो दुकान क्योंकि अभी रुचि उसमें है, इसलिए कहते हैं रुचि जहाँ है उस ओर उपयोग चला जाता है। जो आत्मा की तीव्र लगनी तीव्र रुचि लग जाती है तो दुनिया की बातें याद ख्याल में ही नहीं आती है, सारे ब्लॉक हो जाते हैं और बस एक आत्मा का ही विचार, आत्मा से ही तरफ वो ज्ञान मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा की ही तीव्र रुचि है। जिसको बाह्य में जरा भी रुचि पड़ी है उसका उपयोग लगेगा कैसे, वो ट्राई कर रहा है आत्मा की ओर ले जाने का, क्योंकि उपदेश सुनता है ना कि आत्मा को जानो, आत्मा की ओर जा, तो ट्रायल तो उसकी जल्दी है ऐसी, और विचार तो आ रहे हैं पढ़ के, तो सब लोगों के क्या कहना, हम तो बैठते हैं मगर वो आत्मा का ध्यान नहीं होता, कुछ अन्य अन्य विकल्प चलते रहते, अन्य विकल्प चलते रहते, इसका अर्थ ही अभी रुचि कहीं ना कहीं अन्यत्र पड़ी है। तो जिसकी रुचि है वहाँ उपयोग भी जाता है और वहाँ के वैसे विकल्प भी उठते रहते। इस सबका उत्तर आने वाला है क्रम से, ठीक है ना। वो गेय भी निश्चित है तो फिर पुरुषार्थ क्या करो, हम तो आत्मा को जानने वाले थे, अभी आपने कह दिया कि गेय निश्चित है तो चलो अभी छोड़ दिया तो फिर क्या तो हम कौन है, पहले हम कौन है, मैं एक मनुष्य हूँ और अंदर कोई आत्मा नाम की चीज पड़ी है और मुझे उसको जानना है, ऐसा कुछ ना कुछ पहले तो इन द बिगिनिंग ऐसा तो भ्रम होता है, क्योंकि मनुष्यपने में आत्मापन बहुत पड़ा है। अब मैं तो जीव द्रव्य हूँ वो तो कैसे जानना, वो भी लक्षणों के द्वारा, ये जो ज्ञान का हो रहा है चल रहा है ज्ञान 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 ज्ञान, ये जानने रूप कार्य कहाँ चल रहा है, शरीर में क्या जीव में, जीव में ये तो निश्चित करेंगे। तो ये जो जानने रूप पर्याय हो रही है वो जीव में हो रही है, जीव के बाहर होगी कि थोड़ी अंदर होगी, जीव के ही पूर्ण प्रदेशों में होगी। तो जहाँ ये जानने रूप कार्य हो रहा है वही तो मेरी लिमिट है सारी, यानी मेरी ही पर्याय में। परंतु अभी देखो क्षेत्र उतना ही है, पर्याय का भी उतना ही क्षेत्र है और जो जीव पूरा है उसका क्षेत्र भी उतना ही है, तो हमें एक पर्याय की तरफ नहीं देखना है, पूरा द्रव्य को लक्ष्य में लेना है। ये सारी जो अभी अभेद की बात है आएगी ना पंचाध्याय में, ये शुरू हो गई अभी पूरा अभेद, यानी वहाँ विशेष का यानी इस पर्याय का लक्ष्य छोड़ना है। अभी ज्ञान में गेय कोई झलक रहा है, अभी झलक रहा है तो हमारे हम तो गेय की तरफ से उसका विचार करते हैं, ये अच्छा है बुरा है अमुक है तमुक है, परंतु यह भी उसी समय ख्याल में आ रहा है ना कि इसको जानने वाले है, जानन रूप कार्य मेरे में हो रहा है, सामने चीज पड़ी है उसको जान भी रहा है, वहाँ कैसे निर्णय हो रहा अभी हो रहा है अंदर कि जानने रूप कार्य मेरे में चल रहा है, तो जानने रूप कार्य मेरे में मेरे अपने से चल रहा है। वो जानन रूप कार्य क्या सिद्ध करता है कि मेरा स्वभाव जानने का है। हम किसकी सिद्धि करने जाते हैं, गेय की, कुछ गेय दिखा तो हमारा सारा लक्ष्य कहाँ है, वो गेय ऐसा वो ब्लू है, हाँ ये किसकी चीज है, ये मेरे और ऐसा ऐसी उसी तो अच्छी है, यानी सारे विकल्प रागात्मक कार्य चल रहा है वहाँ। अभी हम ज्ञान की ओर से देखेंगे कि ये सारा मेरे ज्ञान स्वभाव में चल रहा है, वो मेरे ज्ञान की परे अपने अपने स्वभाव से इसको जान रही है, तो वो जानंद रूप जो कार्य है वो मेरा अपना है, तो पूरा ज्ञान स्वभाव ख्याल में आता है। पूरा ज्ञान स्वभाव तो ये पूरा द्रव्य को ही पकड़ा ना, अकेले एक को नहीं, एक के द्वारा पूरे द्रव्य को पकड़ा हुआ, तो मैं यानी उस सामान्य की ओर से ले जाते हैं इसका इसको जानते हुए भी पूरा ज्ञान स्वभाव को पकड़ाने, उस ज्ञान स्वभाव को पकड़ते यानी लक्ष्य अपने अभेद की ओर ले जाते, वो तो क्रम से आएगा सारा। तो इसलिए क्योंकि ज्ञान की पर्याय कभी ज्ञेयों से खाली होगी नहीं। और हमारा क्या करे, अरे हम इसको जानना छोड़ेंगे तो मुझे आत्मा का ज्ञान होगा, क्यों क्या मानते हैं ये सारे? अभी कोई न कोई आवाज आ रहे, नहीं तो मैं तो ऐसा आत्मा का ध्यान करता कि ये बहुत डिस्टर्ब ज्ञेय है। अभी इसको किसी न किसी ज्ञेय को जान रहा है, हम क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य कहाँ है, ज्ञेय की ओर। और फिर विकल्प यानी राग उठते रहते ज्ञेय से। अब हमारा निर्णय कहाँ ले जाना है कि ये इन ज्ञेयों को जानने रूप जो कार्य, जानने रूप कार्य चल रहा है उसकी ओर देखो, होगा। अब ये नया विषय है ना, पहली बार सुन रहे, इसलिए ऐसा लगता है कि कैसा करना। अभी समझो अंदर से हमें कुछ क्रोध आ रहा है तो लगता नहीं ये क्रोध आ रहा है, किसने जाना है, यानी उसको जाना, ये तो सही है। अभी ये जाना है ना, उस पर भार दो, उसका भी उसकी तरफ देख लो। क्रोध को आते हुए हमने जाना तो वहाँ जानने का कार्य हुआ, तो ये जानन रूप जो कार्य है वो कहाँ से हुए, वो ज्ञान की पर्याय, उसकी योग्यता उसमें, वो द्रव्य में से हुआ ना वो ज्ञान, तो उसको जानने की कोशिश करना, यानी उसके ओर अपना बल ले जाना। ये हमारा लक्ष्य सारा कहाँ है, वो क्रोध आया, वो क्रोध कितना आया, वो क्रोध हो उस वस्तु के कारण मुझे क्रोध आया उसको हटाओ, यानी ये सारा ही हमारा ज्ञान बाहर की ओर है। तो किसी चीज को हम जान रहे हैं तो अपनी ओर लक्ष्य करना। ये पहले तो सुनेंगे ना इसको, निर्णय करते करते जाएंगे, ये सारा होगा ऑटोमेटिक होगा। पहले तो हमने पता ही नहीं था ना इस बारे में, हमने तो इतना ही मान लिया था सामने चीज है, हम ज्ञान कर रहे हैं। अभी हमें तो इतना तो पता चला कि नहीं, ज्ञान तो अपने से हो रहा है, यहाँ तक तो आ गए ना, आगे की भी वो सारा सुलझन हो जाएगा, उसकी चिंता मत करना। ये कोई सिद्धांत पहली बार सुनते हैं तो ऐसे लगते हैं ये कैसे होगा, क्या होगा, अपने ये अपने बस की बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत सरल है ये सारा। इतना तो हमने अभी जान लिया कि ज्ञेय तो अपने, ये ज्ञेय किस ज्ञेय को जानना, ये तो अपनी अपनी स्वतः की योग्यता है, वो योग्यता अपने अंदर पड़ी। अब इतना ही लेके हम आगे चलेंगे क्योंकि इसकी चर्चा आगे भी आने वाली है। प्रत्येक द्रव्य अचल है, पर्वत को भी अचल कहते हैं, संस्कृत शब्द है। तो प्रत्येक द्रव्य पर्वत है यानी अचल है, उसे चलायमान करने का प्रयत्न करना बाल चेष्टा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हिमालय पर्वत को कोई बच्चा जाके अपने हाथों से हिलाना चाहे तो वैसी चेष्टा, वैसे प्रयत्न जैसा है। कैसे कि प्रत्येक द्रव्य को हम परिणमना चाहते हैं, वो बाल चेष्टा है। कैसे, जैसे किसी बड़े पर्वत को हिलाने जैसी चेष्टा है। यदि द्रव्य पर्वत है तो पर्याय भी पार्वती यानी अचला है। यह तो ये तो दृष्टांत रूपक देकर समझाया। कहते हैं पर्वत की लड़की वो पार्वती, तो द्रव्य पर्वत है तो पर्याय को पार्वती का है। द्रव्य अचल है तो पर्याय भी अचला है, वो पर्याय को भी कोई डिगा नहीं सकता। जैसे पर्वत को कोई अपनी जगह से हिला नहीं सकता है, वैसे पर्याय को भी कोई अपने वो द्रव्य को भी हिला नहीं सकता, तो पर्याय को भी अपनी जगह से कोई हिला नहीं सकता। जिस प्रकार अचल द्रव्य को चलायमान नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार अचला पर्याय को भी स्वकाल से चलायमान करना संभव नहीं है। उसकी जो निश्चित काल है उस समय ही होगी, उस समय से पहले या बाद में उसको कर ही नहीं सकते, इसलिए उसको अचला कहा। जैसे द्रव्य अचल है तो पर्याय भी अपनी अपनी जगह में सत है, उसको कोई डिगा नहीं सकता। एक समय की भी पर्याय को बदलने के लिए अर्थात उसे स्वसमय से हटाने और उसके स्थान पर दूसरी पर्याय लाने के लिए यदि सारा जगत भी एक साथ यत्न करे तो भी वह सफल नहीं होगा। अरे हम अकेले तो नहीं डिगा सकते, हम इतने सारे मिलकर तो डिगा सकेंगे? कोई तीव्र निच्छाती है और हम सारे ऐसा जबरदस्त प्रयत्न करें कि उसको संयुक्त कर दे, क्या संभव है ये? तो सारा जगत भी एक साथ यत्न करे तो भी वह सफल नहीं होगा, वह उस पर्याय को स्वस्थान से हटा नहीं सकेगा। हाँ, जिस जिस भूमिका में वैसे भाव आ जाएंगे कि सामने कोई जिज्ञासु व्यक्ति है और वो स्वयं जानना चाहता है, तो ऐसे भी उसको बताने के भाव भी आएंगे, परंतु ये तर्क तो बुद्धि नहीं कि मैं इसका मिथ्या तो हटा दो और इसको सबको सम्यक्ति बना दो, ऐसी कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, ऐसी मिथ्या मान्यता उस जीव की नहीं होती। द्रव्य स्वभाव तो अनंत शक्तिशाली है ही, पर पर्याय स्वभाव में भी अपनी सीमा को सुरक्षित रखने की अनंत सामर्थ्य है, यानी पर्याय अपना स्वरूप वैसा ही रखे, ऐसी पर्याय की भी अनंत सामर्थ्य है। जैसे द्रव्य के अनंत गुण कोई उसमें से निकाल नहीं सकता, पर्याय में भी उस समय की पर्याय में उसी पर्याय रूप से रहने की अनंत सामर्थ्य, उस पर्याय को कोई फेर दे ऐसी सामर्थ्य किसी में नहीं है, जिनेन्द्र इंद्र नरेंद्र कोई भी हो, ये सारा जगत भी एक और हो जाएगा तो भी ऐसी सामर्थ्य उसमें नहीं है। द्रव्य हाँ, ऐसी सीमा को सुरक्षित रखने की अनंत सामर्थ्य है, कोई उसकी सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता, उसमें फेरफार करने की बुद्धि वाले जगत को अंततः यानी अंत में हार ही हाथ लगेगी, यानी वो तो हार जाएगा, बाय चांस उसके पर्याय उसके अपनी कारण से प्रकृति तो ये मानेगा हाँ देखो मैंने कर दी तो प्रकृति की नहीं करती, और अभिमान और पुष्ट करेगा, पर के कृतज्ञ बुद्धि को और पुष्ट करेगा, क्योंकि बाय चांस ऐसा होता है ना कि उसकी वह होने वाली पर्याय उसके अपने से होती है, और यहाँ जो जीव मानता है देखो मैं कराता हुआ मैंने ऐसा किया तो उसके ऐसे हुआ, मैंने उसको उपदेश दिया तो वो करता, तो ऐसे उसकी कर्तृत्व बुद्धि और पुष्ट हो जाती है। द्रव्य यदि त्रिकाल सत है तो पर्याय भी स्वकाल की सत है अर्थात सती है, ये अलग अलग रूपकों में इसको बताया है कि द्रव्य त्रिकाल सत है, यानी अनादि अनंत द्रव्य विद्यमान है, परंतु पर्याय भी अपने अपने जगह में सत है, विद्यमान है, उसको कोई भी डिगा नहीं सकता, उसको कोई भी पलटा नहीं सकता। इतिहास और पुराण इसके साक्षी है कि सती का सत्य यानी सतीत्व लूटने वाले कभी सफल नहीं हुए, अपितु उन्हें अपने उस अक्षम्य अपराध का कठोरतम दंड भुगतना पड़ा है। ध्यान रहे, सती पर्याय से छेड़छाड़ करने अर्थात उसे बदलने की वृत्ति वाले अपराधियों को भी उसका दंड भोगना होगा, अनंत काल तक संसार में भ्रमण करना होगा। ये रावण की कथा थी, वो सीता को उसने पलटाना चाहा, उसका प्यार राम पर था, उसको ऐसा प्यार मुझ पर करे ऐसे उसको चाहती, क्योंकि परस्त्री सेवन नहीं करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा लिया हुआ था, तो वो परस्त्री थी स्त्री सीता, और वो अपने मन से अगर मुझे चाहे तो मैं उसको अपनी रानी बनाऊ ऐसी उसकी इच्छा थी, परंतु वो पलटी नहीं। तो ऐसे पर्याय को जो पलटना चाहता है वो एक रावण हुआ, और हम कितनी पर्याय पलटने चाहते अनंत द्रव्यों के अनंत, और हम अनंत रावण होके बैठे हैं। तो उसका दंड क्या होगा, अनंत काल तक संसार में भ्रमण करना होगा। पर्याय के सत का अपमान करने के इस महापाप से यानी मिथ्यात्व से, मिथ्यात्व ही महापाप है, वे बच न सकेंगे। द्रव्य और गुणों में फेरफार करने का विकल्प न आकर पर्याय में ही फेरफार करने का विकल्प क्यों आता है, क्योंकि वो पलटती हुई दिखती है ना, तो हमें लगता है ये पलटती है ना, तो हाँ हम हमारी मर्जी से उसके थोड़े कुछ चेंजेस करें तो अच्छा है। इसका सहज मनोवैज्ञानिक कारण है, जहाँ फेरफार करने की गुंजाइश दिखती है वहाँ ही फेरफार करने का विकल्प आता है, जहाँ गुंजाइश नहीं दिखाई देती वहाँ कुछ करने का विकल्प भी नहीं उठता। यानी कोई जीव द्रव्य को पलटा कर पुद्गल द्रव्य नहीं बनाना चाहता, या कोई पुद्गल को ये जीव नहीं बनाना चाहता, परंतु जो अपनी या अन्य की पर्याय जो बदलने वाली दिखती है ना कि ये बदलने वाली कोई अंश है द्रव्य का, तो उसे ही अपनी इच्छा अनुसार पलटाना चाहता है, कि उसको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ कोई बदलने की गुंजाइश है, पॉसिबिलिटी है। जैसे हम किसी अवैध कार्य को कराना चाहते हैं और उसे करना अनेक सरकारी कर्मचारियों के हाथ में है। अवैध यानी ख्याल में आता है इल्लीगल। जिस कर्मचारी पर हमें यह भरोसा हो कि यह किसी भी कीमत पर अवैध कार्य नहीं करेगा, हम उसे करने को कहते भी नहीं है। पर जिस कर्मचारी के बारे में हम यह समझते हैं कि इससे साम दाम दंड भेद से काम कराया जा सकता है, उसी से हर प्रकार से कार्य कराने का यत्न करते हैं। तो उसके कुछ लाश ऐसे वो ईश्वर देकर ये कार्य हो सकता है ऐसा जब मानते हैं, या उसको कोई डरा धमका कर कार्य हो सकता है ऐसा जब मानते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों के द्वारा वो कार्य कराना चाहते हैं। वो खैरना को जाके कोई ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं कराएगा उसको मिलकर, वो डिगने वाला नहीं है और उसको धमकाने से भी वो चले ऐसी बात नहीं है। तो जहाँ अन्य कर्मचारी है कि जो कुछ पैसा खाकर भी काम करवाते हैं या कोई किसी को डरा कर भी काम किया जाता सकता है, ये साम दाम दंड भेद का से जानते हैं आप? ये चार पद्धति से कार्य होता है। बहुक और क्रूक। साम यानी सामोपचार कहते हैं समझा कर, दाम यानी दाम देकर पैसा देकर रिश्वत देकर, दंड यानी उनके कोई ऐसे सजा पनिशमेंट करके, और भेद यानी दो में कुछ आपस में ऐसे लड़ाई झगड़ा। एम नहीं, भेद यानी दो फूट डालना। जैसे बच्चे हैं ना, बच्चे क्या है, माँ बाप माँ से जाके मांगेंगे, पिता से दोनों ने नहीं कह दिया तो फिर ऐसा मैं माँ ऐसा कहती थी आपके बारे में, या पिता को ऐसा कहेंगे, तो ये आपस में कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा करा के अपना काम करवा लेगा। हाँ अंग्रेजों नहीं है पाकिस्तान हिंदुस्तान में, हाँ वो हाँ भेद पार कर। किसका? हाँ सामोपचार जिसको कहते, साम यानी समझा बुझाकर, दाम यानी पैसा देकर, या कोई आमिष दिखाकर यानी वो लालच दिखाकर रिश्वत के, दंड यानी वो सजा शिक्षा जिसको कहते मराठी में, दंड देकर। ये बहुत मशहूर है, साम दाम दंड भेद से अपना कार्य करवा लेना। हाँ अंग्रेजों ने भी ये सारे किए ना, पहले शाम वो समझा कर पैसे वगैरह देकर शिक्षा यानी वो सजा करके, या भेद से, फिर भेद नहीं थी, ये फूट पाड़ी हमारे में, उसी से हर प्रकार से कार्य कराने का यत्न करते हैं। उसी प्रकार ये चार लाइन पढ़ते फिर रन करेंगे। उसी प्रकार द्रव्य और गुण की अचलता प्राय यानी मोस्टली सबके ख्याल में सहज आ जाती है, अतः उनमें फेरफार करने की बुद्धि नहीं होती, किंतु पर्याय की अचलता सहज ख्याल में नहीं आती, यानी पर्याय कोई डिगा नहीं सकता, ये बात ख्याल में नहीं आती। यही कारण है कि उसमें फेरफार करने की बुद्धि बनी रहती है। क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची समझ बिना, देखो क्या कह रहा है, क्रमबद्ध पर्याय जो वस्तु स्वरूप है उसकी सच्ची समझ बिना पर्यायों की अचलता ख्याल में नहीं आती, यानी पर्याय हर पर्याय अपने जगह पर अडिग है ये बात ख्याल में नहीं आती, और उनमें फेरफार करने की बुद्धि बनी ही रहती है। अब इसकी और चर्चा हम कल करेंगे। उसी प्रकार यानी जैसे ऊपर कहा ना कि जो अवैध कार्य करना हो तो कोई कर्मचारी ऐसा है वो तो किसी साम दाम दंड भेद से भी नहीं मानता है, और जो पलटने वाला है कोई कर्मचारी पैसे वैसे, तो उसके साथ कंपैरिजन की। उसी प्रकार पहले दृष्टांत दिया ऊपर और फिर सिद्धांत घटाया। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देतवो।